ओम शांति। गीत क्या कह रहा था? आप बाबा सदा साथ है तो हमें और क्या चाहिए। लेकिन आज की मुरली में बाबा ने प्रश्न में क्या पूछा था? अभी भी कई बच्चों को लोभ होता है और लोभ माना ही क्या, चाहिए चाहिए चाहिए। और हमने गीत गाया, बाबा आप सदा साथ है तो हमें और क्या चाहिए। लेकिन जब बाबा हमको देखता है तो बाबा को दिखाई पड़ता है बच्चों को अभी भी चाहिए चाहिए है। लोभ माना ही चाहिए चाहिए, खाने का शौक, पहनने का शौक। बाबा ने यहां तक के उदाहरण भी दे दिया साड़ी का, कि फलानी को साड़ी पहनी अच्छी देखी तो लगा कि मुझे भी चाहिए ऐसी साड़ी। यही तो लोभ है ना? लोभ माना क्या? किसी ने बहुत अच्छी से कहा, लोभ माना जब हम अपनी मुट्ठी में कुछ बंद करते हैं ना, तो वो चाहिए होता, वो कामना होती है। लेकिन बंद मुट्ठी में भी खोले बगैर और कुछ भरना चाहते हैं, वो है लोभ। मतलब जरूरत हो या न हो पर मुझे चाहिए। साड़ी मैं रोज पहनती हूं, मेरे पास तो है, जरूरत नहीं थी मुझे एक्स्ट्रा। लेकिन किसी की अच्छी साड़ी देखी तो मुझे लगा ये चाहिए। तो जरूरत हो या न हो फिर भी चाहिए, उसको कहते हैं लोभ। और लोभ किसका एक हिस्सा है? रावण क्या है? हाँ, रावण इन्हीं विकारों का स्वरूप है। और आज हम देख रहे हैं हमारे कैंपस के अंदर पांडव भवन के प्रांगण में दिवाली की भी तैयारियां शुरू हो रही है, कहीं लाइटिंग्स भी लग गई है। और यहां तक कि इस हेडक्वार्टर में चूंकि बहुत सारे स्थान हैं, तो अलग अलग स्थान पर अलग अलग दिन दिवाली मनानी होती है। तो आज से दिवाली मनाना भी शुरू हो गया है। लेकिन बाबा कहते हैं ये दीपावली जो दीपों का पर्व है, जो अंधकार को चीरता है, वो कब मनाया जाता है? जब पहले रावण जल जाता है, उसके बाद ही ये पर्व मनाया जाता है। तो ये तो यादगार हम हर साल मनाते हैं, क्योंकि यादगार के रूप में हमने रावण को भी जला दिया। लेकिन सच्ची में अपने जीवन से रावण को अभी भी जलाना बाकी है, क्योंकि अभी तक हम चल रहे हैं इस नरक कलयुगी दुनिया में ही है, वो सतयुगी दुनिया अभी तक आई नहीं है। मतलब सच्ची दीपावली अभी आनी बाकी है, सबकी ज्योत जगना अभी बाकी। और चाहे हमारी भी ज्योत जग क्यों नहीं गई है, लेकिन वो ज्योत कैसी ज्योत बने? पूनम के चांद जैसी ज्योत बने, कि जहां अब और प्रखरित होने की कोई मार्जिन नहीं है। इतनी हमें अपनी ज्योत को जगाना है, तब सच्चे अर्थों में दिवाली। और वो तब जगती है जब पहले रावण मरता है। तो रावण को किसने मारा था? यादगार पर्व भी जो हम मनाते हैं, रावण को किसने मारा था? कौन सा राम? क्योंकि दो राम हैं, एक है दशरथ नंदन राम और एक है निराकार राम। है कुछ इनमें फर्क? वो त्रेतायुगी, त्रेतायुग में भी दशरथ नाम होगा राम के पिता का? नहीं मालूम। हाँ, राम सीता तो जरूर होंगे। बाबा कहते हैं कि महाराजा महारानी जो होंगे त्रेतायुग के, वो राम सीता होंगे। पर ये नहीं पता कि उसके पिता का नाम उस समय भी दशरथ होगा या नहीं। तो ये जब दशरथ नंदन राम की बात आती है, ये वास्तव में बाबा कहते हैं ना, जितने भी यादगार हैं, वो सारे के सारे कहाँ के यादगार हैं? संगम युग के यादगार हैं। तो ये दशरथ नंदन राम कौन है? ये है आत्मा। दशरथ नंदन, ये शरीर क्या है? रथ है ना। दस क्यों कहा? तो रथ तो है, फिर दशरथ क्यों कहा? दस इसमें इंद्रियां हैं। कौन कौन सी दस इंद्रियां हैं बताओ तो जरा। हाँ, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है बोलो बोलो बोलो। पांच ज्ञानेंद्रियां कौन सी है? पांच ज्ञानेंद्रियां। रात्रि क्लास होती है ना, चिट चैट की होती है। हाँ, ज्ञानेंद्रियां मन बुद्धि संस्कार तक पहुंच गए हमारे भाई साहब तो। हाँ, क्योंकि ये सब बेसिक बातें हैं। लेकिन जैसे होता है ना, स्कूल में भी जब हम बारह खड़ी पढ़ते हैं ना, तब अच्छी से याद होता है। लेकिन आज अगर कोई पूछेगा क ख ग, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं, होता है ना। तो ऐसे ये बहुत बेसिक बातें हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसका बीच बीच में हमें रिवीजन करते रहना चाहिए। क्योंकि जब जब रिवीजन करते हैं तो उसकी गहराई में और उतरते हैं। क्योंकि यहां तक कि मुरलियां भी देखो, पांच साल की मुरलियां साकार, इतने वर्षों से हम क्या कर रहे हैं, उसको रिवाइज कर रहे हैं। चलो हम तो कहेंगे अभी अभी आए हैं ज्ञान में, किस कोई कहेगा 10, 20, 30, 40, 50। दादियों को देखो, यज्ञ को 80 साल से भी ज्यादा हो गए और तब से दादियां उन्हीं मुरलियों को रोज पढ़ रही है, सुन रही है और बार बार रिवाइज कर रही है। और कई बार वो कहती है कि ये तो पहली बार पॉइंट आया है। नहीं, क्योंकि हर बार जब पढ़ते हैं तो उसकी एक नई अलग गहराई महसूस होती है। तो इसलिए बेसिक ज्ञान को बार बार रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। तो बताइए पांच ज्ञानेंद्रियां कौन सी है? आंख, नाक, कान, जीव और चार हो गए, पांचवी त्वचा, पांचवी। और पांच कर्मेंद्रियां बताओ अभी। हाथ, पैर, हाँ, पांच, पांच चाहिए। हाथ और पैर दो हो गए जी। कौन सी? वो तो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, पांच कर्मेंद्रियों की बात चल रही है अभी। बुद्धि तक पहुंच गए, वो तो सूक्ष्म इंद्रियां हैं। बाबा ने कहा, देखा, कहा ना, रिवीजन करेंगे तो पता चलता है मैं कहां तक भूल गई, कहां तक याद है मुझे। पांच कर्मेंद्रियां हैं, एक तो हाथ, फिर वो दो हाथ है पर है तो हाथ ही ना, पैर और वाणी, मुख से निकलती है वाणी, और मल द्वार, और है जनन इंद्रिय, संतान उत्पन्न करना, मल त्याग करना। हाथ से कोई चीज पकड़ेंगे ना तभी तो काम करेंगे, और एक ही जगह खड़े होकर थोड़ी काम करेंगे, चलना फिरना पड़ेगा ना, और अकेले ही थोड़ी करेंगे, मिलके करेंगे ना, तो बोलना भी तो पड़ेगा ना। तो ये सब पांचों क्या है? कर्मेंद्रियां है, और पांच है ज्ञानेंद्रियां। तो ये शरीर जिसको दस इंद्रियां है, तो ये दस रथ, दस इंद्रियों वाला रथ दशरथ। तब कहा दशरथ नंदन राम, राम का जन्म दशरथ के घर में और मां कौशल्या की गोद में। तो मतलब वो आत्मा जो इस दस इंद्रियों वाले रथ को बड़ी कुशलता से चलाती है, कौशल्या माना कौशल, कुशलता से चलाती है। तो आगे आता है दशरथ के घर में, कौशल्या की गोद में और अयोध्या नगरी में राम का जन्म हुआ। तो ये आत्मा जब 10 इंद्रियों वाले रथ को बड़े ही कुशलता से चलाती है तो यहां युद्ध नहीं चलता है। यहां युद्ध नहीं चलता है। अगर यहां पे अकुशलता आ गई ना किसी भी इंद्रियों को चलाने में तो यहां बहुत सारा युद्ध चलता रहता है, चलता रहता है। और वो युद्ध इतना चलता रहता है कि बिस्तर पे लेट भी गए, कर्मेंद्रियों को कर्म से फ्री कर दिया, ज्ञानेंद्रियों को भी फ्री कर दिया, लेकिन अभी मन चल ही रहा है। और इसलिए सुबह कब हो जाती है पता नहीं चलता है, और कहते सुबह हो गई, मेरे को तो अभी नींद ही नहीं आई है। इतना युद्ध चलता है और इसीलिए नींद की कमी हमेशा अनुभव होती रहती है, क्योंकि मन बहुत थक रहा है, मन बहुत थक रहा है, युद्ध में लगा पड़ा है। बेशक मन का काम है विचार करना, लेकिन वो भी विश्राम लेता है, उसकी भी सक्रियता शांत होती है, तब जाकर हमारा अंतर्मन सक्रिय होता है। तो इन दोनों की बारी बारी से सक्रियता होती है, एक बार अंतर्मन सक्रिय होता है, एक बार बाह्य मन सक्रिय होता है। लेकिन बाह्य मन सक्रिय इतना रहता है कि चुप होने का नाम ही नहीं लेता, और उस सारी गड़बड़ कहां से होती है, इन 10 इंद्रियों को चलाने में अगर हमारे पास कुशलता नहीं है तो। इसलिए देखो उदाहरण के लिए वाणी, आजकल हम बोल जल्दी देते हैं, बचपन में सिखाया था बोलने से पहले सोच लिया करो, आजकल क्या करते हैं पहले बोल देते हैं फिर सोचते रहते हैं, फिर रातें जागते रहो बैठ के उसको ठीक करने में, है ना। और अब बाबा कहते हैं सोचने से भी पहले सोचो। वो तो बचपन में यहां तक सिखाया था कि बोलने से पहले सोचो, लेकिन बाबा क्या सिखाता है, सोचने से भी पहले सोचो। क्योंकि अगर हम सोचने से पहले नहीं सोचते हैं उसका परिणाम क्या आ रहा है आज जीवन में, हमने जो सोच लिया। अब उस दिन भी बाबा ने देखो क्या बोला था, अभी जो मुरली चली ना व्यक्त बाप दादा के नीचे गए थे हम सभी मिलन मनाने, तो कईयों ने ईमेल द्वारा संदेशों द्वारा बाबा को याद भेजी, पत्रों द्वारा। तो बाबा ने कहा वो जो जिनके थ्रू आप भेजते हो वो तो बाद में पहुंचता है संदेश, लेकिन जिस घड़ी आप संकल्प करते हो कि बाबा को हमारी याद देना उसी घड़ी बाबा को वो संकल्प पहुंच जाता है। और इसलिए बाबा कहता है सोचने से भी पहले सोचो, क्योंकि हम सोचते किसके लिए हैं, सारा दिन में जो सोच चलती है वो किसके प्रति चलती है हमारी सोच, किसके प्रति चलती है सोच, बोलो। सोच चलती है ना सारा दिन, हाथ काम कर रहे होते हमारे, मैकेनिक, एक मैकेनिक बन गया, एक संस्कार बन गया है, पता है रोटी ऐसी बेलनी होती, रोटी बेलना शुरू हो गई, लेकिन ये सोचता है किसके बारे में सोचता है ये, क्या पूरा ही समय हम बाबा के बारे में सोचते हैं, क्या पूरा ही समय हम ज्ञान का चिंतन कर रहे होते हैं, नहीं। तो किसके बारे में सोच रहे होते हैं, अन्य आत्माओं के बारे में ही सोच रहे होते हैं, ऐसा होता है नहीं होता है। तो सोचने से पहले सोचो क्यों बोला, कि जैसे बाबा ने कहा कि जब तुम संकल्प करते हो कि बाबा को मेरी याद देना उसी समय बाबा को पहुंच जाती है, मतलब सोच इतनी पावरफुल होती है, इतनी उसकी गति होती है, आपने किया नहीं जिसके प्रति किया वहां तक पहुंच जाता है, यही हुआ ना इसका सीधा सा अर्थ। और इसको साइंस विज्ञान जगत ने भी आज प्रूफ कर दिया है। तो अगर हम आत्माओं के बारे में ही सोच रहे होते हैं तो जब मैं किसी के लिए सोच रही होती हूं कितना अच्छा सोच रही होती हूं वो चेक करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो सोच रही हूं वो उसको पहुंच रहा है तुरंत, उसको तुरंत पहुंच रहा है, और जब मैंने सोचा बोलने के समय तो बहुत अटेंशन रखा मैंने, क्योंकि चार लोगों के सामने हम अपनी छवि बहुत अच्छी बना के रखना चाहते हैं ना, तो दुनिया को दिखना नहीं चाहिए ना कि मैंने गलत शब्द बोले, दुनिया को दिखना नहीं चाहिए कि मैंने गलत व्यवहार किया। लेकिन यहां किसको दिखता है, दुनिया को दिखता है क्या का? वो तो मेरे को ही दिखता है सिर्फ। हम ये सोचकर हम कुछ भी सोचते रहते हैं और वो वहां तक पहुंच जाता है, और ऐसे ही ऑटोमेटिक रिश्तों में तनातनी हो जाती है, दूरियां बढ़ जाती है, और यहीं से रावण तो शुरू हो जाता है ना, रावण तो यहीं से शुरू हो जाता है। बाबा ने आज लोभ का भले बोला, लेकिन रावण तो सभी विकारों का एक सामूहिक स्वरूप है। तो रावण को अगर मारना है तो सोचने से भी पहले सोचना है, और सोचने से भी पहले सोचना मतलब आत्मा जो है, जिसको कहा वो राम है, वो आत्मा बाबा ने हमें बताया क्या है, ज्योति स्वरूप है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, पूरे जो मूल संस्कार है आत्मा के। तो जब मैं किसी आत्मा के लिए सोच रही हूं तो मुझे चेक करना है, मैं इस रूप में सोच रही हूं या किसी और रूप में सोच रही हूं, क्योंकि और रूप में सोचा तो वो भी चला जाएगा उसके पास सोच, और इस रूप में सोचा तो ये भी चला जाएगा, लेकिन दोनों की रिजल्ट जो आएगी वो अलग अलग आएगी। जिसको ही बाबा ने कहा ये रावण तब तक नहीं मरेगा जब तक एक दूसरे के प्रति आत्मिक दृष्टि नहीं होगी, और आत्मिक दृष्टि माना ही वो हर अगला व्यक्ति जिसको मैं याद कर रही हूँ, जिसके बारे में सोच रही हूँ, वो भी एक क्या है, आत्मा है, और वो भी आत्मा के वही वाले ओरिजिनल संस्कार हैं। अभी कुछ और हैं, लेकिन मूल वाले तो सबके और हैं। कौन से? एक जैसे हैं। अभी वाले सबके अलग अलग दिख रहे हैं भले, लेकिन पहले वाले जो घर से उतर के आए थे वो सबके एक जैसे हैं। तो क्या मेरी सोच की क्वालिटी औरों के प्रति उस लेवल की होती है? मुझे तुरंत चेक कर लेना होगा अगर मैं अपने अंदर के रावण को मारना चाहती हूँ, अगर मैं सच्ची दिवाली अपने जीवन में लाना चाहती हूँ, और अपनी दिवाली से, अपने जले हुए दीपक से अन्य आत्माओं का दीप जगाना चाहती हूँ, तब जाके पूरे संसार में दिवाली आ सकती है। लेकिन शुरुआत किससे होगी? मेरी खुद से होगी। तो दशरथ नंदन राम कौन है? हम आत्माएं हैं। हमें क्या करना है? बड़ी कुशलता के साथ इन इंद्रियों को चलाना है। एक उदाहरण बाबा ने दे दिया, देख ली किसी की साड़ी अच्छी, ऐसी सुन लिया किसी के बारे में, बहुत सभी इंद्रियां काम कर रही होती है ना, तो हर एक पर मुझे क्या करना है, अटेंशन रखना है। इस बार जो बाबा ने मुरली चलाई थी उसने भी यही कहा था कि तीन खाते जमा करने की विधि क्या बताई, चाबी का नंबर क्या बताया, तीन बिंदियां, जीरो जीरो जीरो, बिंदी बिंदी बिंदी। और ऐसे ही ये जो रावण है, क्योंकि रावण को मारना माना इन विकारों से दूर रहेंगे तो खाते जमा होंगे, अच्छा सोचेंगे तो खाता जमा होगा ना, और मैं अच्छा नहीं सोच रही हूं तो क्या होगा, वो विकार का स्वरूप बनता जाएगा, रावण बड़ा होता जाएगा, है ना। तो जो माया है, जो पांच मुख्य विकार बाबा कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनके भी स्वरूप को परिवर्तन करना है, इसकी भी विधि यही है, क्योंकि दोनों बातें साथ चल रही, या तो ये होगा या तो ये होगा, या तो रावण बड़ा होता जाएगा या तो मेरे जमा का खाता बड़ा होता जाएगा, दोनों का तरीका एक ही है, तीन बिंदियां। कौन सी है वो तीन बिंदियां? आप, बाप और ड्रामा। तो ये तीन बिंदियों की सहायता से बाबा कहते हैं खातों को भी बढ़ा सकते हो, माया को भी जलाना, मना क्या परिवर्तन, क्योंकि आत्मा क्या है, अजर अमर अविनाशी है। सत्व प्रधान, रजो प्रधान, तमो प्रधान, ये शब्द मुरली के अंदर आते हैं। तो सत्यता, सत्व प्रधान जो आत्मा की सत्यता है, जो आत्मा के मूल संस्कार है, उसको जीवन में प्रधानता देनी है। तो जब हम किसी के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे ये सोच देखना होगा कि मेरी सोच में वो मूल संस्कार की प्रधानता है या नहीं। और अगर इसके बदले रजो प्रधान की, रजोगुण की प्रधानता होगी, माना ही ये माया रावण चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है। तो जैसे ही ये चलेगा, मतलब रजोगुण बड़ा होगा, तो रजोगुण बड़ा होगा तो सत्वगुण क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। तो खाता कम हो गया ना, तभी बाबा ने दोनों की विधि एक ही बताई, चाहे खाते जमा करना है तो भी तीन बिंदियां है, और माया को परिवर्तन करना है तो भी तीन बिंदियां है। तो तीन बिंदी को हमेशा में साथ में रखना है। लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ होगी? अमृत वेले, क्योंकि सुबह ही तैयार होते हैं ना, तिलक कब लगाते हैं? सुबह तैयार होके नहा धो के लगाते हैं ना। तो बाबा भी कहता है तीन बिंदियों का तिलक से जो अपना श्रृंगार करना है वो कब करना है? सुबह सुबह अमृत वेले, कि जब आंख खुलती है तो मैं अपने आप को क्या देखूं? आत्मा स्वरूप में देखूं। और वो तब होगा जब मैं रात्रि को सोई उस स्मृति के साथ, क्योंकि बाबा की याद में सोना है ना। तो बाबा की याद में अगर मैं बाबा की गोद में सोई हूं और फिर सुबह जब आंख खुल रही है मैं अपने आप को बिस्तर में देख रही हूं, मतलब मैं आत्मा बिंदी अवतरित हुई हूं ना अभी। तो ये मेरा संकल्प हो कि मैं आत्मा बिंदी ज्योति प्रकाश, अब कर्म क्षेत्र में क्या किया है मैंने? अवतरण किया है। लेकिन कर्म क्षेत्र से पहले आत्मा बिंदी जो अवतरित हुई है, किसकी याद में हूं मैं? परमात्मा पिता बिंदी की याद में हूँ, वहां से शक्ति भर लेती हूँ कि अब कर्म क्षेत्र में जब उतरूंगी, ड्रामा की एक एक सीन मेरे सामने आएगी और वहीं पर मार्जिन है माया के आने की, है ना। कर्म क्षेत्र में जब उतरेंगे तब एक एक सीन आती जाएगी, मार्जिन है किसकी? माया के आने की, या लोभ की, किसी की अच्छी चप्पल देख लेंगे, चप्पल तो मेरे पास बहुत है पहनने के लिए, लेकिन किसी की अच्छी चप्पल देख ली, मुझे भी ऐसी वाली चप्पल चाहिए, तो कहीं ना कहीं से माया आई जाएगी। लेकिन वो माया से बचे रहें, इसलिए सुबह ही अपने आप को पाठ पढ़ा देना है, ड्रामा क्या है? कल्याणकारी है। ड्रामा क्या है? और तीन बातें तो, दो तीन बातें इसकी भी, ड्रामा की भी, हू बहू रिपीट हो रहा है, और जो होता है अच्छा ही होता है, मेरे भाग्य में वही आएगा जो 5000 वर्ष पहले आया था। बाबा मुझे वो सब कुछ देगा जिसकी मुझे जरूरत है। तो अगर मैंने अपने आप को ऐसे पाठ सुबह सुबह पढ़ा दिया, तो फिर बाद में जो बाबा ने कहा ना कि आवश्यकता ना हो तो भी लगे कि मुझे चाहिए, उसी का नाम लोभ है। तो उससे हम अपने आप को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। सुबह सुबह तीन बिंदियां अपने आप को लगा देना है, क्योंकि सीता को भी क्या हुआ था? हाँ, क्या चाहिए था उसको? भी तो चाहिए था ना, क्या चाहिए था उसको? हाँ, हिरण क्या देख लिया था उसने? बाबा ने तो साड़ी की बात कही। सीता का क्या उदाहरण आता है? उसने सोना
हिरण देख लिया था और उसके मन में क्या आया, ये मुझे चाहिए। और जैसे ये मुझे चाहिए की रट लग गई, एक बार आंखों से देखा, तभी कहा ना इंद्रियों को कुशलता से चलाना है। आंख ने देखा और चाहिए की भावना प्रबल हुई, और उस चाहिए की भावना जो प्रबल हुई उसको पाने के चक्कर में रावण के वशीभूत हो गई। रावण के वशीभूत कैसे हुई? पहले तो लक्ष्मण को दौड़ना पड़ा उसकी जिद के कारण, क्योंकि लक्ष्मण उसकी सुरक्षा के लिए उसके साथ था। लेकिन उसने जिद की कि ये जो सोना हिरण जा रहा है ये मुझे चाहिए, और उसकी जिद के कारण लक्ष्मण को उसके पीछे जाना पड़ता है, और जब वो जाना पड़ता है तो इसकी सुरक्षा के लिए इसको एक रेखा के अंदर बांध के जाता है कि इस रेखा के बाहर तुम्हें नहीं आना है। लेकिन रावण तो उसी समय आ गया और रूप बदल कर आ गया, पता ही नहीं चला उसको। तो हमारे जीवन में भी ड्रामा में एक एक सीन आती है तो हम क्या कहते हैं, तो साड़ी अच्छी लगी तो साड़ी तो पहनने में क्या खराब बात है, ऐसे बोलेंगे ना हम भी, तो वो अट्रैक्टिव रूप में आएगा। तो रावण बहुत ही अट्रैक्टिव फॉर्म में है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो रावण था। तो बहुत अपने आप की संभाल करनी है, हर दिन हर पल अपने आप को संभालते हुए चलेंगे, इंद्रियों के धोखे से अपने आप को बचाएंगे, तब जाकर रावण हमारा मरेगा तो छोड़ो हमारे पास आएगा नहीं। आ गया ना रावण, क्यों आया? क्योंकि हट के कारण आ गया ना। तो जब रावण आ भी गया, समझो सीता उसकी कैद में चली भी गई, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? सीता कैद में चली गई तो राम अलग रो रहा है, सीता अलग रो रही है। राम को सीता चाहिए, सीता को राम चाहिए। अब बताओ ये सीता कौन है? राम भी आत्मा है, सीता भी आत्मा है, बोलो। और लक्ष्मण कौन है? इसलिए कहा दो राम है, एक है दशरथ नंदन राम और एक है निराकार राम। तो वो निराकार राम शिव बाबा आके इस दशरथ नंदन राम माना आत्मा को सिखाता है कि इस 10 इंद्रियों वाले रथ को कैसे चलाना है। और कैसे चलाना है मतलब क्या कहता है वो? कुशलता माना कैसे कि इस मन को बाह्य जगत से अब थोड़ा अंदर लेके जाओ, अंतर्मुख बनना सिखाता है ना। पहला ही लेसन क्या मिलता है? तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो। तो इंद्रियां तो देह में थी, तो जब देह से ध्यान हटा माना इंद्रियों से भी ध्यान हटा, और इंद्रियां ही तो मुझे बाहर लेके जा रही थी ना, इंद्रियां ही तो मुझे बाहर के दुनिया के विस्तार में लेकर जा रही थी। तो विस्तार से पहला ही लेसन हमें क्या करता है? सार में लेकर आता है कि सार जीवन का क्या है? आत्मा। अगर आत्मा ही नहीं होती तो ये देह होती क्या? देह ही नहीं होती तो फिर इतने सारे पदार्थों की वस्तुओं की जरूरत होती क्या? देह ही नहीं होता तो इतने सारे रिश्ते होते क्या? देह नहीं होता तो इतनी मकान, इतनी बिल्डिंग, इतने सब चाहिए होता क्या? नहीं। तो सार में बाबा पहले खींच लेता है। तो वो निराकार राम आकर, मतलब परमात्मा आकर इस आत्मा को सबसे पहले क्या करता है? रावण की जेल से छुटाने के लिए अंतर्मुखी बनाता है कि अंदर झांकना सीखो, क्योंकि चाहिए तुमको शांति जीवन में, चाहिए तुमको जीवन में प्रेम, चाहिए तुमको जीवन में खुशी, तो उस रास्ते पर चलना पड़ेगा ना। अगर मुझे दिल्ली जाना है लेकिन मैं मुंबई की ट्रेन में बैठ जाऊं और ट्रेन में बैठ के भी बोलूं मुझे तो दिल्ली जाना है, मुझे तो दिल्ली जाना है, मुझे तो दिल्ली जाना है, अरे भाई दिल्ली जाना है तो ट्रेन तो चेक करो कौन सी में बैठे हो। बैठे मुंबई के ट्रेन में और बोल क्या रहे हैं? दिल्ली जाना है। तो लाख बोलते रहो लेकिन पहुंचने वाले कहां हो? मुंबई में पहुंचने हो। ऐसे ही कहते तो हम यही है, बाबा मेरे जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, बोलते वो रहते हैं लेकिन चलते कौन से रास्ते पे हैं, जहाँ पे ये है ही नहीं, जहाँ पे इसका उल्टा है। और इसीलिए बाबा पहला काम करता है अंदर का टर्न। जब रास्ते में जाना होता है तो टर्न याद करने पड़ते हैं कि पहले लेफ्ट लेना है, फिर राइट लेना है, फिर ऐसा लेना है, याद करना पड़ता है ना, तब जाके मंजिल पर हम पहुंचते। एक भी टर्न अगर गलत कर दिया तो डेस्टिनेशन पर, मंजिल पर नहीं पहुंचकर कहीं और पहुंच जाएंगे। तो यहां पर भी सिर्फ एक गलती की है कि हम पूरा ही समय इस धरती पर आकर क्या हो गए, बहिर्मुखता में आ गए। और इस बहिर्मुखता के कारण हम अपनी खुशी, शांति, प्रेम सब कुछ गवा बैठे और फिर उसको रोज पुकारते। भक्ति मार्ग में तो यही किया ना, शांति चाहिए, खुशी चाहिए। तो भगवान कहता है टर्न गलत क्यों कर रहे हो, हाँ, जिस जहां पहुंचना उस ट्रेन में बैठो ना। तो अंतर्मुखी बनो, क्योंकि आत्मा में, स्वयं में वो खुशी समाहित है, वो प्रेम समाहित है, वो आनंद समाहित है। तो एक टर्न अंदर का जैसे ही लेंगे, उसको ही कहा, सीता को कहा गया लक्ष्मण, रेखा के अंदर। कि इस मन को बाबा के लक्ष्य देता है अंदर की तरफ तू झुका रहे। जो बाहर की तरफ झुक गया है ना, अब तू क्या कर, अंदर की तरफ झुका रहे। तो पहले दिन जब लेसन मिलता है, शुरू शुरू में ज्ञान में चलते हैं तो थोड़ा अभ्यास करते हैं अंतर्मुखी का, लेकिन फिर वो भी क्या हो जाता है, रूटीन बन जाता है ना। और रूटीन बनते बनते वापस क्या हो जाता है, जैसे भक्ति मार्ग में कर रहे थे, रोज कथा पूजा पाठ कर रहे थे और साथ में और भी कुछ कर रहे थे, फिर ये भी हो जाता है ना, उसे धीरे धीरे हो जाता है ना। इसीलिए बाबा बीच बीच में क्या करता है, हमें अटेंशन खिंचवाता है। इसीलिए रोज उन्हीं मुरलियों को पढ़ने का, हाँ, मतलब उन्हीं मुरलियों को पढ़ने का महत्व क्यों है, क्योंकि बातें तो वही है लेकिन मेरा ध्यान बार बार क्या हो जाता है, क्योंकि वर्षों की 63 जन्मों की आदत पड़ी हुई है कि मन आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है उससे हटकर बाह्य दुनिया में बहुत फंस गया है। तो ये आत्मा कोई और नहीं, सीता कोई और नहीं है, मन ही है। जो मन अंदर, आत्मा राम की तरफ उसका लगाव होना चाहिए था, उसका लगाव बाहर की दुनिया में, माना रावण में लग चुका है। तो वो सीता को राम से वापस मिलाने में मदद कौन किया था उधर, हनुमान ने किया था। हनुमान माना क्या, महावीर माना क्या, हनुमान, हनन, मान माना अभिमान, जिसने अभिमान का हनन किया है वो है हनुमान। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, बॉडी कॉन्शियसनेस, यही तो अभिमान है ना, मैं फला हूँ, फला हूँ, फला हूँ, फला जगह पर रहता हूँ, फला काम करता हूँ, इसका क्या करना पड़ेगा, हनन करना पड़ेगा, इसको खत्म करना पड़ेगा, तब जाकर वो हनुमान क्या करता है, लंका को जलाता है। लेकिन तो राम को भी मदद लेनी पड़ी हनुमान की। और हनुमान का दूसरा नाम क्या है, एक तो हनुमान है कि जिस हनुमान माना वो आत्मा जिसने अपने अभिमान का हनन किया है, दूसरा वो किसका पुत्र है, पवन पुत्र कहा जाता है। तो सांस आ रही है, जा रही है, माना अटेंशन कितना देना है, सांसों सांस। जब हम अटेंशन देंगे तब जाकर सही अर्थों में सीता और राम की मुलाकात होगी। और जब सीता और राम की मुलाकात होगी तब सच्चे अर्थों में दीपावली होगी, अर्थात आत्मा का प्रकाश जो है बहुत प्रखर होकर बाहर निकलेगा। और तब बाबा कहते हैं कि आपके चेहरे और चलन से बाप को प्रत्यक्ष करना है, मतलब अंदर का जो प्रकाश है आत्मा का, जो इन विकारों के कारण ढक गया है, जब मन बार बार अंदर की ओर झुका रहेगा, बाह्य से ज्यादा ग्रहण नहीं कर रहा है, अंदर ही झुका है, उसके अंदर जो आत्मा के पास जो ओरिजिनल संस्कार है उसको बार बार स्मृति में लाता है, तो प्रकाश क्या होता है, प्रखर होता है। इसी को क्या कहा उस दिन, कौन सी तपस्या कही थी बाबा ने, कौन सी देवी को याद किया था, ज्वाला देवी को, कि हमारा अभी तपस्या कैसी हो, याद कैसी हो, ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी माना क्या होता है कि आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है, लेकिन इन विकारों के कारण क्या हो गया, वो प्रकाश ढक गया है। तो सीता अब क्या करे, यहाँ पे खिलौना भी है, बाबा भी मुरली में बताते हैं ना कि रावण की तरफ क्या करती है सीता, पीठ कर देती है, और राम की तरफ क्या करती है, मुख कर देती। तो मन अब क्या करे, आत्मा की तरफ अपना मुख कर दे और दुनिया की तरफ पीठ कर दे। तो मन आत्मा की तरफ मुख कर दे मतलब आत्मा के संस्कारों को बार बार चिंतन में लेकर आए, हर आत्मा के प्रति भी जब सोच चल रहा है उसको भी उस आत्मा स्वरूप में बार बार देखें, तब जाकर रावण मरता है, नहीं तो नहीं। तब आत्मा और मन माना सीता और राम का मुलाकात होता है, प्रकाश निखरेगा, और ज्वालामुखी याद इसको ही बोलते हैं, क्योंकि वो जब प्रकाश अंदर में आत्मा का निखरेगा तो ये कर्टन है ना, ये देह क्या है, पर्दा है ना, तो पर्दे से, क्योंकि प्रकाश जितना ज्यादा होगा, आप देखो कभी धूप में खड़े रहो, आपको कितने भी मोटे वस्त्र क्यों नहीं पड़े हो, आपने कभी नोटिस किया, धूप जब तेज होती है आर पार दिखता है, दिखता है, दिखता है ना। तो अगर ये प्रकाश बहुत निखरेगा, ये चमड़ी मोटी कितनी भी क्यों नहीं हो, प्रकाश कहाँ जाएगा, बाहर आएगा या नहीं आएगा, तो जब बाहर आएगा तो चेहरे पे जो चमक आएगी वही ज्वाला देवी होगी ना, और कौन सी ज्वाला देवी होगी, ज्वाला देवी और कौन सी होगी। तो ऐसी हमें याद का स्वरूप बनाना है। तो याद बना सिर्फ इसको नहीं कहते हैं कि हम बैठ गए और योग लगाया और इसको कह दिया याद, नहीं, उठते बैठते चलते फिरते वो सोच से बचना है जो सोच मेरे प्रकाश को आवरण चढ़ा देती है, और उस सोच के तरफ मुझे ढलना है जो सोच मेरे प्रकाश के आवरण को तोड़ती भी है और उस प्रकाश को बाहर बिखेरती भी है, तब सही अर्थों में हमारा क्या होगा, ज्वालामुखी तपस्या होगी, हम ज्वाला देवी बनेंगे, और ज्वाला देवी बनकर क्या करेंगे, चेहरे और चलन से बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। तो बाबा तो अभी हम देख रहे हैं बाबा के मिलन की विधियां कैसे बदलती हुई स्वरूप ले रही है, और ये एक इशारा है कि समय क्या होता जा रहा है, समाप्ति के नजदीक चलता जा रहा है। तो समाप्ति के नजदीक जितना जा रहे हैं उतना वाणी क्या होने वाली है, वाणी की सेवा, वाचा की सेवा क्या होने वाली है, कम होने वाली है। और कौन सी सेवा ज्यादा काम करेगी, मनसा भी करेगी और चेहरा और चलन प्रत्यक्ष वाला। लोग देखते हैं जीवन को कि अगर आप कहते हो कि राजयोग मेडिटेशन से ये जीवन में लाभ होते हैं और आप करते हो सालों से, लेकिन वो आपके जीवन को देखते हैं। अगर दिखता है तो स्वीकृति में उनको देरी नहीं लगती है, और नहीं लगता है, नहीं दिखता है तो बार बार प्रश्न पूछते हैं कि अगर ऐसा होता है तो फिर आपने वो दिख रहा क्यों नहीं है, और उस समय क्या जवाब होता है हमारे पास, क्या जवाब होता है हमारे पास, बोलो क्या जवाब देंगे, अभी हम पुरुषार्थी हैं, लेकिन पुरुषार्थ की भी लिमिट होती है ना, स्कूल में जब हम पढ़ने बैठते हैं, साल के शुरू में बैठे, साल होता है ना एक सेशन, तो सेशन मतलब परीक्षा के बहुत नजदीक आ रहे हैं। जब परीक्षा के बहुत नजदीक आ रहे हैं तो कुछ तो मुझे मालूम होना चाहिए नहीं, और हम क्या अभी तो पुरुषार्थ ही है। बच्चा भी अगर के साल के पेपर के बहुत नजदीक पहुंच रहा है और अभी क्या कुछ भी नहीं आता है तो क्या कहेंगे, कि पहले से ही बोल देंगे कि ये इतने परसेंट लाएगा, इससे ज्यादा नहीं ला सकता है। और फिर जिसको बाबा ने क्या कह दिया कि पद डिसाइड हो जाएगा, आज भी बाबा ने कहा ना कि अगर लोभ करोगे पद क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। तो इतनी ऊंचे बाबा को हमने अपना जीवन दिया, दुनिया में इससे बड़ी कोई शक्ति है, कोई नहीं। तो सर्वशक्तिवान का साथ मिलकर भी अगर छोटे मोटे पद में ही रह जाएंगे तो, जैसे बहुत अच्छी स्कूल में कोई एडमिशन लेता हो जहां का रिजल्ट पूरा ही टॉप मेरिट लिस्ट का ही आता है, लगभग फर्स्ट क्लास ही आता है, और उसमें जाकर कोई बच्चा सेकेंड और थर्ड आ जाता है, तो बच्चा तो आया आया लेकिन उसके साथ नाम किसका जाता है, उस स्कूल का भी जाता है। वो स्कूल ये नहीं बोल सकता है कि हमारा रिजल्ट 100% है या हमारा रिजल्ट पूरा ही फर्स्ट क्लास का होता है, नहीं बोल सकता है ना, तो उसको भी क्या लग जाता है, दाग लग जाता है। और इसलिए वो भी बहुत सोच समझ कर क्या करते हैं, एडमिशन देते हैं बच्चों को। तो ऐसे ही हमें भी, हम भी तो स्कूल में एडमिशन लिया हुआ है ना, हमने भी तो क्या किया है, ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया है, क्या बनने के लिए, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। तो लक्ष्मी नारायण वाले, लक्ष्मी नारायण माना ही जिनका ओरा, जिनका आभा मंडल इतना है, इतना है कि जिसकी यादगार पूरा एक चक्र दिखा दिया पवित्रता का। तो ज्वाला स्वरूप बने हैं तब जाकर पवित्रता का एक ताज मिला है। तो इतना मुझे अपने आप पे अटेंशन रखना है कि पवित्रता का प्रकाश, और ये सबसे बड़ा धन है। आज का स्लोगन क्या था, स्लोगन क्या था, हाँ, धनवान वही है जिसके पास शांति और पवित्रता है। तो और सारे धन इसके सामने फीके हो जाते हैं। तो अगर ये सिर्फ एक धन है पवित्रता का और शांति का, तो जीवन में जो पांच प्रकार के सुख चाहिए होते हैं वो अपने आप मिल जाते हैं। तो हमको चाहे जीवन में कोई भी प्राप्ति चाहिए, उसके लिए प्राप्ति के पीछे नहीं भागना है, सिर्फ मुझे अटेंशन रखना है अपनी पवित्रता की रोशनी पर, अपने दिए को बार बार देखते रहना है। एक बार एक मंदिर में कोई जाते हैं ना, जैसे मंदिर में जाते तो आजकल क्या होता है, मंदिरों में भी बहुत कोलाहल होता है, बहुत आवाज होता है। तो एक बहन ने एक पंडित जी से कहा कि मैं मंदिर में आती हूँ लेकिन बहुत कोलाहल रहता है, आवाज होता है, इससे तो अच्छा मैं घर पर ही बैठी रहूं। तो उसने क्या किया, मंदिर के पुजारी ने उस बहन को कहा कि एक दिया देता हूं मैं आपको, ये दिया लेके आप मंदिर की क्या करो, परिक्रमा करो, और इस दिए को बुझना नहीं चाहिए। तो जब उसने काम कर लिया तो उसको पूछा कि आज आपको कितनी आवाज सुनाई दी, कितना कोलाहल सुनाई दिया, बोले कुछ भी नहीं, क्यों, बोले पूरा ध्यान उधर ही था। तो दुनिया में भले कुछ भी चल रहा हो लेकिन मेरा पूरा ध्यान किस पर हो, सामने वाला कैसा भी कुछ कर रहा हो, मेरा पूरा ध्यान किस पर हो, अपने इस दिए पर हो कि इस दिए का प्रकाश कम न हो, अर्थात यहाँ पर उठने वाली कोई सोच ऐसी न हो जो अपवित्रता की लिस्ट में आती हो, जो अशांति की लिस्ट में आती हो, जो रावण की लिस्ट में आती हो, तब जाकर ये दिया क्या हो जाएगा, प्रखर प्रकाश वाला बना रहेगा। और इसी को बाबा कहते हैं कि तुम किसके जैसे बन जाओगे फिर, क्योंकि बाबा भी क्या है, प्रकाशित है। हम तो क्या होते हैं, आत्मा पूनम की चांद की तरह उतरी लेकिन कैसे बन गई, अमावस के चांद की तरह, लेकिन वापस बनना है उसको पूनम का चांद। और तब जाके बाप लोग कहेंगे ये तो जैसे कि बाप समान, जैसे कि क्या लग रही है सब, भगवान लग रहे हैं। और जब लोगों के मुख से निकलेगा तभी क्या हो जाएगा, बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो ये काम हमें करना है इस दीपावली पर, चम रोशनी का पर्व मनाए तो इस रोशनी पर भी हम अटेंशन रखें। ओम शांति।